अगला वाक्य देखेंगे, हमें मजीद गाइडलाइन मिलेगी कि हम किस तरीके से दूसरों को नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और साथ साथ अपने लिए दुआएं करें, क्योंकि आपको पता है कि जो इल्म की महफिल होती है ना, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। हदीस में आता है कि इल्म की महफिल को फरिश्तों ने घेरा होता है, हत्ता कि ऐसे पाइल अप करते हुए फरिश्ते आसमानों तक पहुँचते हैं। तो जहाँ फरिश्ते होंगे वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है ना। तो इंशाल्लाह हम अपने लिए दुआएं करते हुए आगे चलते हैं। 25 नंबर का वाक्य, मैमूना रदी अल्लाह अन्हा का शराब की बदबू वाले करीबी को धमकी देना। हज़रत मैमूना का एक रिश्तेदार इनके यहाँ आया, इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उन्होंने इसको हुक्म दिया कि वो शरई हद के लिए अपने आप को मुतल्लिका अहकाम के रूबरू पेश करे, वरना वो इससे कतए ताल्लुक़ कर देंगी। नोट करें, रिश्तेदार है, घर आया हुआ है, गलत काम किया है, तो कहती हैं कि या तो ये काम छोड़ दो वरना मैं कतअ ताल्लुक ही करूँगी। हदीस पढ़ते हैं, मैमूना के एक कराबतदार इनके पास आया, उन्होंने इसके हाँ यानी इसके मुंह में बदबू को पाया तो फरमाया, अगर तू मुसलमानों के पास ना गया ताकि वो तुझे कोड़े मारें, या उन्होंने फरमाया कि वो तुझे पाक ना करें, तो तू कभी भी मेरे घर में दाखिल ना होना। क्या पता चला कि मैमूना ने अपने करीबी रिश्तेदार का एहतसाब किया और धमकी के दर्जे पे बात की, और ये एहतसाब मुतअद्दिद दरजात में से एक है जिसको बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एहतसाब करने के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं जिसमें से ये एक है, और किसी के अंदर ऐसा काम देखना कि हद के काबिल है, आपको पता है कि शराब पीने पर हद है, तो अपने रिश्तेदार में ऐसा काम देखकर उन्होंने सख्ती से इसका नोटिस लिया। ये बड़े अहम पॉइंट है। आप में से बहुत सारों के जहनों में कुछ सवालात होंगे कि क्या हम फिर अपने रिश्तेदारों से कतअ ताल्लुक ही कर लें, उनको छोड़ दें? तो यहाँ समझ लीजिए, रिश्तेदार को नहीं छोड़ना, उसकी बुराई को छोड़ना है। हमने अपने प्यारों के गलत कामों में उनका हिस्सेदार नहीं बनना, या उनकी गलत चीज़ देकर उनको समझाना है, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ना। और सिला रहमी का बेहतरीन दर्जा यह है कि किसी को बुराई से रोका और भलाई का हुक्म दिया जाए। सिर्फ तरीका अच्छा रखिए, टोन अच्छी रखे, इंसल्टिंग स्टाइल ना हो, घर आया बंदा बेइज्जती महसूस ना करे, चिढ़ में ना आ जाए, उसकी अना ना बेदार हो जाए, तो किसी को गलत काम से रोकना। उसके बाद दोबारा उसके साथ मिलिए, बात कीजिए। आप किसी रिश्तेदार को देखते हैं, उसके घर में शादी है, ये है वो है, गलत काम है, साफ कहें, झूठ नहीं बोलना, बीमार हैं, दूर है, ये है वो, हम एक और झूठ बोलते हैं ऊपर, नहीं, साफ कहिए, क्लियरली कहें, हम वहाँ कंफर्टेबल नहीं हैं, हम आपको भी इसी की एडवाइस करेंगे लेकिन हम नहीं आएंगे। और जाने से पहले ही कह दीजिए, ना कि आप मौके का इंतज़ार करें। हम में से हर एक को पता होता है कि इस रिश्तेदार ने किस नहज पे प्रोग्राम करने हैं, किस दावत में क्या माहौल होगा, तो क्या मुंह देखते रहें कि आखिरी दिन बहाना बनाएं? 4 माह पहले ही कह दें, अगर इस किस्म का मामला होगा तो हम नहीं शरीक होंगे। और शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, बाद में आपको मज़ा आएगा कि अल्लाह तेरे लिए, अलहुब्बु फिल्ला वलबुग्जु फिल्ला, सारा ख़ानदान छोड़ दे मुझे, सारे बहन भाई, सारे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ हो, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने तेरी बात के लिए उनसे ये बात की है। तो मौके की मुनासिबत से पहले ही बात कर दें। फिर इसके बाद आप देखिए कि रिश्तेदार की इसलाह की गरज से कतअ ताल्लुक ही जायज़ है। आप देखते हैं बार बार की नसीहत के बावजूद कोई रिश्तेदार गलत काम नहीं छोड़ता, ख़ास तौर पर उसमें भी बड़ी बात है, अकल हराम है, हराम माल है। आप अब उनके घर जाएंगे, चाय पियेंगे वहाँ? अभी आपने ब्रेक में चाय पी, जिन्होंने आपके लिए इख्तमाम किया उनको दुआ देते हैं कि अल्लाह मबारक लहुम फी मा रज़क़ता हूँ वग़फ़िर लहुम वरहम हूँ। मोमिन तो दुआएं देता है कि अल्लाह बरकत दे, रहम कर, इनके गुनाहों को माफ़ कर। अब हराम का माल किसी ने खिलाया आपको, अब आप उसको ये दुआ भी देंगे तो क्या आपकी ये दुआ उसको लगेगी? नहीं लगेगी। तो बेहतर है कि अपने प्यारों को पहले से ही दीन के साथ जोड़ा जाए, ना कि ये कि जब वो हमें बुलाएं और फिर हम बात करें और फिर झिझकें और बुरे बने। इस्लाह की खातिर कराबदार से बायकाट कतअ रहमी में शामिल नहीं है, बल्कि बाज़ुकात ऐसा करना ही सिला रहमी होता है। इसको नोट कर लें, हाईलाइट कर लें जुमला। बाज़ दफ़ा सिला रहमी का तकाजा ये है कि आप अपने रिश्तेदार से बायकॉट करें। किस चीज़ में? उस चीज़ में। अगले दिन फिर पहुंच जाएं, खाना दें, मिलें, बात करें, अच्छी बात करें, गलत बात ही माना। और आप अकेले हैं ना, दूसरी दफ़ा दो होंगे, तीसरी दफ़ा तीन होंगे, 1-2 साल में हमारे सब रिश्तेदार ठीक हो जाएंगे, या वो आपको छोड़ देंगे या वो गलत चीज़ें छोड़ देंगे। लेकिन हम खामोश बनकर ना ना करते हुए फिर गलत बातों पे आते। आप देखिए, एक दिन मैं आपके लिए गलत बात मानूंगी ना, अगले दिन आप उम्मीद रखेंगे आप मानेंगी, तीसरे दिन आप मुझसे ना मानने पर नाराज़ होंगे, चौथे दिन आप मेरे पर रोब डालेंगे, माने कसूर हमारा होता है, हम फर्म नहीं होते, कभी मान ली कभी नहीं, कुछ कर ली, ढीली बातें करते हैं। जिस बंदे को खुद नहीं यकीन अपनी बात का, उसकी बात कोई क्यों माने? देखिए, ये टेबल है ना, ये स्ट्रांग है, इस टेबल को भी यकीन है कि मैं स्ट्रांग हूँ, और हमें भी यकीन है कि ये स्ट्रांग है, इसीलिए इसके ऊपर चीज़ें रख के बैठे हुए ना। जरा सा हिलता हुआ टेबल हो तो मैं तो नहीं रखूंगी अपनी चीजें, क्या पता गिर जाए, पता नहीं क्या हो। तो जब मेरी बात ठुकी हुई है, सच है, मैं आपसे मनवा लूंगी, प्यार से मनवाऊं, आधे जुमले से मनवाऊं, गुस्से से मनवाऊं, चुप रह के मनवाऊं, मैं मनवा लूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है मेरी बात ठीक है। या आप कायल कर दें या कायल हो जाएं, या किसी के हो जाएं या किसी को अपना कर लें। लेकिन इसका ऑपोजिट, अगर मैं ही नहीं, हाँ देखते हैं, सोचते हैं, एक्चुअली एक्चुअली बस ये क्या करें मजबूरियाँ, तो आप मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। ऐसा कुरान ना अल्लाह किसी से पढ़वाए। और उस्ताद अगर ऐसा मिल जाए ना, तो सारे ही फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो सारी मसलियत पसंद बन जाते हैं। तो लिहाजा इस बात पे गौर व फिक्र हम सब की ज़रूरत है। फिर अगली बात देखिए, इस वाक्य में हज़रत मैमूना की दीनी हमीयत और गैरत दिखती है। हमीयत क्या होता है? हिमायत, हामी और नासिर होना, दीन की हिमायत करना। सच पूछे, हमारे अंदर रिश्तेदार की हमीयत तो होती है कि रिश्तेदारी का मामला है, तो क्या दीन की हमीयत होती है? हम कहते हैं भाई जो है रिश्ते को नाराज़ नहीं करना। और गैरत, कितनी गैरत आती है एक बंदे को कि दीन की नाफरमानी करते हुए हम रिश्तेदार को खुश कर रहे हैं। इनकी नज़र में दीनी तकाजे को तोड़कर अपने तर्ज अमल पर इसरार करने वाले कराबतदार से किसी किस्म का ताल्लुक बाकी रखना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे लोगों के लिए कहाँ फरमाते हैं? सूरत मुजादिला आयत नंबर 22 है, और ये हम सब के लिए लाहे अमल है। सूरह मुजादिला तो है ही सारी ऐसी बातें सिखाती हुई कि किस रिश्ते को किधर जोड़ना है और किधर तोड़ना है। ला तजीदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह ताला और क़यामत के दिन ईमान रखने वालों को आप इन लोगों से मोहब्बत करते हुए नहीं पाएंगे जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, चाहे वो इनके बाप हों। अब लिस्ट बनाइए ज़रा, एक दो लिखिए ऊपर, बाप हों, बेटे हों, या इनके भाई हों, या ख़ानदान वाले हों, और पीछे क्या रह गया? आपके खून के रिश्ते हैं, अपने हैं, प्यारे। पर अल्लाह कहता है सच्चा ईमान वाला इन लोगों के साथ प्यार नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अगर नाफरमानी है तो इन्हीं लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को मजबूत कर दिया और अपनी नुसरत खास से इनकी तायद की है, और वो इन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह ताला इनसे राजी है और वो इससे खुश हैं। यही अल्लाह ताला की जमात के लोग हैं। आगाह रहो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब लोग हैं। अल्लाह हमें भी ऐसों में शामिल करें। दिल चाहता है अल्लाह की जमात में होने का? देखिए, आप अल्लाह की जमात में होंगे ना, फिर आपको फोकस होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि BIA के साथ काम करने वाला कभी कभी एमिरेट्स वालों के साथ जाके मिल जाए। ये नहीं हो सकता कि एक कंपनी का मैनेजर जाके दूसरी कंपनी का कभी साथ दे। बस ये जुमला याद रखे, अगर आप हिजबुल्ला में शामिल होना चाहते हैं, यू नीड टू बी डिसाइडेड, फोकस्ड। दुनिया राजी, बिस्मिल्लाह, दुनिया नाराज, सो बिस्मिल्लाह, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। ये अल्लाह चाहता है, ये है असल दीन। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रा, ये सब इसी की प्रेपरेशंस होती हैं। आज दीनी हमीयत नहीं है, नमाज रोज़ा बहुत है। ये हमारा एक डलमा है। हम आज इस सोसाइटी में बैठे हैं जहाँ 5 वक्त अजानों की आवाज़ आती है। दूसरे मुल्कों में तो 5 अजानें होती हैं, हमारे मुल्क में तो 15 तो होती हैं ना। हर अजान 3-3 मस्जिदों से आती है ना। जहाँ एक अजान में और नमाज में अल्लाह अकबर का लफ्ज़ इतनी दफ़ा बोला जाए, तो वहाँ फिर माशरा अकबर, सोसाइटी अकबर, ख़ानदान अकबर, ज़ात अकबर। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ दे। अब ये वाक्या बड़ा खूबसूरत है, आपने पढ़ा होगा पहले भी शायद, औरत का बुराई का इरादा करने वाले को कत्ल करना। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक शख्स ने एक औरत के साथ बुराई का इरादा किया। औरत के इनकार पर इसने ज़बरदस्ती अपने इरादे की तकमील की कोशिश की, औरत पीछे हटी, यानी रिजिस्ट किया उसने इस बात से। एक पत्थर उठाया और इसी से इस मर्द का काम तमाम कर दिया। वाक्या है, इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक ने उबैद बिन उमैर से नकल किया, कहते हैं कबीला हुज़ैल के लोगों के पास एक मेहमान आया, लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए उन्होंने अपनी एक लौंडी भेजी। मेहमान इस पर फरेफ्ता हो गया, यानी उसका दिल उस पर आ गया या उस पर बुरी नज़र उसने डाली और उसके पीछे लग गया, इसको बुराई पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। फिर इसने इस औरत के साथ लड़ाई शुरू कर दी। कुछ देर लड़ाई जारी रही, यकायक वो पीछे हटी और इसको पत्थर उठाकर दे मारा। पत्थर ने इसके जिगर के टुकड़े कर दिए और वो मर गया। फिर वो अपने घर वालों के पास आई और इन्हें सारा माजरा सुना दिया। इसके घर वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों के पास गए और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने तफ्तीश और तहकीक के लिए किसी को भेजा तो इन दोनों के निशानात मुबैना मुकाम पर पाए गए, यानी जो बयान किया गया था जगह, वहाँ वाकई ये वाक़या हुआ था। इस पर उमर ने फरमाया कि अल्लाह ताला का कत्ल करदा है, इसकी कभी भी दियत अदा ना की जाए। और एक और दूसरी रिवायत में क्या है, ज़ा का कतीलुल्लाही वल्लाही ला युद्द अबदन, वो अल्लाह का मारा हुआ है, अल्लाह की कसम इससे कभी भी दियत अदा ना की जाए। क्या पता चला इस वाक्य से, नंबर एक, औरत की इज्जत और इस्मत की हिफाजत। इतना जज्बा है कि एक औरत गलत काम पे नहीं चली बल्कि उसको मार दिया। जुरत कितनी थी, आज की औरत होती तो बेहोश हो चुकी होती, कुछ भी होती, लेकिन वो उसको मार के आई। दूसरी बात देखिए कि औरत के साथ बुराई का इरादा किया जाए और औरत अपने बचाव की खातिर अगर बुरा इरादा करने वाले को कत्ल के सिवा कोई चारा कार अगर ना हो तो उसको कत्ल कर दे, तो इस पे कोई गुनाह नहीं होगा ना कसास होगा। हज़रत उमर ने भी यही फैसला किया था और सरजमीन शाम में हज़रत दहाक बिन कैस ने भी यही फैसला फरमाया। इमाम इब्ने अबी शैबा ने सलेमान बिन जस्सार से ये रिवायत नकल की है कि यकीनन एक औरत ने दहाक बिन कैस के पास आकर बतलाया, एक शख्स ने इसको दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। इस औरत ने मदद के लिए फरियाद की लेकिन कोई इसकी मदद को ना पहुंचा, और तब सर्दी का मौसम था, इसने मजबूरन दरवाज़ा खोल दिया और चक्की का पाट मार कर इसका काम तमाम कर दिया। दहाक ने तहकीक की खातिर एक शख्स को इस औरत के साथ रवाना किया तो वहाँ चोरों में से एक चोर मरा पड़ा था और इसके साथ चुराया हुआ सामान था। उन्होंने इसके खून को बातिल करार दिया, यानी औरत से कसास ना लिया। और इसके अलावा उलमाए उम्मत भी इसको वजाहत से बयान करते हैं। मसलन इमाम अहमद ने ऐसी औरत के बारे में फरमाया, जब औरत को मालूम हो जाए कि वो इससे बुराई का इरादा रखता है और वो अपनी इज्जत को बचाने की गरज से इस मर्द को कत्ल कर दे तो इस पर कुछ गुनाह या कसास नहीं है। इमाम बगवी कहते हैं कि अगर कोई मर्द किसी औरत से बुराई का कसद करे और वो औरत इसको धक्का दे और कत्ल कर दे तो इस पर कुछ गुनाह या कसास नहीं। सिर्फ यही बात नहीं बल्कि इज्जत और नामूस की हिफाजत की खातिर बुराई का इरादा करने वाले शख्स को कत्ल के सिवा और कोई चारा ना हो तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स का कत्ल करना औरत पर वाजिब है। और इस बात पर उम्मत के फुकहा का इत्तफाक है। क्या इत्तफाक है फुकहा का? कि इज्जत पर हमलावर होने वाले का रोकना वाजिब है। अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ बुराई का इरादा करे और औरत के लिए अपने बचाव की गरज से इस मर्द को कत्ल के सिवा कोई और चारा ना हो तो इस्तताअत की सूरत में से मर्द को कत्ल करना वाजिब होगा। फिर अगली बात क्या पता चलती कि जिना कितना संगीन जुर्म है कि किसी औरत को इस पर मजबूर करने वाला वाजिबुल कत्ल करार पाता है। अब आप देखिए कि वो हदीस भी आपने सुनी होगी, आपने फरमाया जो जान बचाते हुए और माल बचाते हुए और इज्जत बचाते हुए मारा जाए वो शहीद है। यानी ये इतनी बड़ी बात है, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन राह जाते कोई गन पॉइंट पे आपका पैरस छीना चाहे, कोई मर्द है उसको के गाड़ी से उतरो, हत्तुल बसा रिजिस्ट करना चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना फौरन उतार के दे दो, अल्लाह माफ़ करे, फितनों से बचाए, चूंकि दिफा नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर ऐसे में हाथापाई हो, कत्ल तक भी हो जाए, घर में चोर आ गया, आप मुकाबला कोई कर सकता है मर्द घर का, करना चाहिए। ये मार देगा तो इसको गुनाह नहीं, दियत नहीं है, कसास नहीं है, उसको उसके बदले में मारा नहीं जाएगा। फिर आप देखिए कि जब ये गुनाह आम होने लगे वैसे ही फिर क्या होगा? हमारे यहाँ आप देखिए जिना बिल जबर कहते हैं इसको, हर अखबार में दो तीन वाक़ तो होते ही होंगे इस बात के, और इस बात को वाक पब्लिसाइज किया जाता है। नहीं, इज्जत के लुटेरे हैं, उनको ख़त्म कर दिया जा सकता है। और फिर इसमें यह भी पता चलता है कि उस दौर की औरतें कितनी बाशऊर थी, उनको अपनी इज्जत का कितना ख्याल था। आज अल्लाह रहम करे 500-500 रुपये पे औरतें अपनी इज्जत बेचती भी देखी गई हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप्स के आपने भी नाम सुने होंगे कि मर्द खुद अपनी बीवियों को चौकों पे खड़ा करते हैं, पैसे लेते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूसरे मर्दों के पास भेज देते हैं। इससे ज़्यादा और किसी सोसाइटी का डिक्लाइन फिर क्या होगा कि गुर्बत उसको यहाँ तक पहुँचा दे? तो बहरहाल बात वाज़ेह है। फिर अगला वाक़िया है दौरान तवाफ सलीब वाले कपड़े पर आयशा का एहतसाब। हज़रत आयशा ने एक औरत की चादर पर सलीब की शक्ल देखी तो क्या किया? इमाम अहमद ने दकरा उम्मे अब्दुर्रहमान अजनिया से रिवायत नकल की। उन्होंने बयान किया, क्या मुम्मल मोमिनीन आयशा के साथ बैतुल्ला का तवाफ़ कर रही थी, उन्होंने एक औरत पर सलीब वाली चादर देखी तो इससे फरमाया इसको फेंक दो, क्योंकि रसूलुल्लाह ऐसी चीज़ देखते तो इसको चीर देते। बात वाज़े। इसी तरह का अगला वाक्य इकट्ठे पढ़ लें फिर इस पर बात करते हैं। दौरान साई सलीब वाले कपड़े पर आयशा का एहतसाब। सई के दौरान आयशा ने एक औरत पर जब सलीब की शक्ल की चादर देखी तो उसको उतारने का हुक्म दिया। इमाम अहमद ने दकरा से रिवायत नकल की और उन्होंने बयान किया, मैं औरतों के साथ आयशा के साथ सफ़ा मरवा के दरमियान सई कर रही थी, मैंने एक औरत के ऊपर सलीब वाली चादर देखी। आयशा ने इसको हुक्म दिया कि इसको अपने कपड़े से उतार दो, क्योंकि जब रसूलुल्लाह किसी कपड़े में इसको देखते तो इसको काट देते थे। अब दोनों वाक़यात में बातें क्या मिली? पहली बात, हज़रत आयशा के दिल में बुराई को ख़त्म करने का जज्बा और तड़प कितनी थी। हम भी अपने आप को देखें कि हमारे दिल में ये तड़प है। फिर बैतुल्ला का तवाफ़ और सफ़ा मरवा के दरमियान सही इन्हें बुराई को मिटाने की कोशिश से गाफिल ना कर सकी। अगर आज ये जज्बा पैदा हो जाए तो इंशाल्लाह बुराई का गलबा सोसाइटी में नहीं रहेगा। दूसरी बात इन वाक़यात में क्या है कि सादा लौह इबादत गुजार दादियों नानियों और माओं के लिए नसीहत और तंबीह है, ये नोट करें सारी दादियां नानियां, क्या कि घर के कोनों में बैठे नवाफिल तिलावत कुरान करीम और मुख्तलिफ औरात में मगन दिखाई देती हैं, और इनके पोते पोतियां नवासे नवासियां और बेटे बेटियां अल्लाह की नाफरमानी के प्रोग्राम के देखने सुनने और ख़ुद करने में मशगूल नज़र आते हैं। ऐसी भोली भाली गाफिल औरतें अपनी गफलत से बेदार हो जाएं और अच्छी तरह समझ लें कि इनका अपनी औलादों को फ़राइज़ की पाबंदी का मुसलसल हुक्म देते रहना और अपने घरों से बुराइयों को मिटाने की खातिर तसलसल के साथ पूरी कुव्वत और ताकत के साथ कोशिश करते रहना ऐसी इबादत से कहीं ज़्यादा ज़रूरी और आला व अफजल है। बात वाज़े? तो इस साथ इबादत भी हों, जिक्र अजकार भी हों, लेकिन अपने घरों वालों को अच्छे तरीके से दीन की दावत भी देनी है। अगली बात क्या कि आयशा ने सलीब वाली चादर उतार फेंकने का हुक्म 2 मरतबा दिया, तो क्या पता चला कि लोगों को अमर या नहीं करते हुए एक बात को दोहराया भी जा सकता है ताकि उसकी अहमियत का अगले को एहसास हो जाए। फिर हज़रत आयशा ने दोनों वाक़यात में अपने एहतसाब के सबूत की खातिर नबी सल्लम की सुन्नत को बतौर दलील पेश किया, और दलील सुन्नत से ही होती है, किसी और की बात से नहीं या कुरान की आयत से। हज़रत आयशा की निगाह में कपड़े में सलीब की सूरत का होना किस कदर संगीन गुनाह है कि दौराने तवाफ और सही भी इस पर एहतसाब किया। अब यहाँ सलीब की बात को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ। देखिए, हर दीन का एक रिचुअल होता है। सलीब देखते ही क्रिश्चियनिटी का अकीदा नज़र आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। हम इस्लाम में इसको नहीं मानते, वमा सलबूहु यकीनन लोगों ने उनको सूली पर नहीं चढ़ाया था। अब इसी तरह की चीज़ें जब हम दूसरों के कपड़ों में देखें तो क्या करें? मसलन तस्वीरों वाले कपड़े हैं, पिक्चर्स हैं, बच्चों के जिस्म पे कपड़े हैं, ऐसे हैं, डॉल्स बनी हुई हैं, जो भी हैं, तो उसमें भी हमारे दिल में ग्रज होना चाहिए। हत्तुल बसा कोशिश करके अपने आप को तो 100% के दर्जे पे, लेकिन अपने दूसरों को करीबी हैं उनकी चीज़ों में इन चीज़ों को रोके। आज के दौर में एक ट्रेंड हो गया, ना चाहते हुए भी कपड़ों के अंदर तस्वीरें बनी होती हैं, कहीं चिड़िया बनी हुई है, कहीं उधर तितलियां बनी हुई हैं, तो इस चीज़ को आगे पहुंचाना चाहिए। अब एक आपने नहीं लिया, इट्स फाइन, लेकिन अब ये मैसेज देकर आए, जहाँ भी जिन बुटीक्स, जिन कपड़ों की दुकानों या ज्वेलरी में ये चीज़ें बिके, वहाँ रिटर्न मैसेज छोड़ के आए कि हम इस ट्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और दुख की बात है कि मुसलमान मुल्कों में हो और हमारे मुल्क में अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है, अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, ख़ास तौर पे जो दूसरे मजाहब की चीज़ है। अब आप देखिए, सलीब तो ख़ास तौर पे रिचुअल है ना, इसी तरह किसी को तिलक लगावा माथे पे देखें, फौरन आपके जहन में हिंदू आएगा। मांग में सिंदूर भराओ हिंदुइज्म है, कड़ा पहनना हो जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो ये सिखों की अलामत है, एक वो उनकी खरपान सी बनी होती है, तो ऐसी चीज़ों को फैशन के तौर पर भी नहीं पहनना चाहिए। मैंने एक पता नहीं कहाँ इन दिनों में देखा, म्यूज़िक का जो वो ऐसे से नहीं बने होते साइन, वो कपड़े में थे, आम गरम मोटे कपड़े सिलवाने वाले जो देख रहे, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा अरे ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि ये मुसलमानों की मिलों के छपे आम जो मरीने मोटे कपड़े उसके अंदर वो बने हुए हैं। हो सकता है किसी को पता ही ना, वो ले ले, एब्स्ट्रैक्ट्स है। अक्ल को अगर यूज़ करें तो हर चीज़ का एक हुसन होता है ना। फैशन के नाम पर नए ट्रेंड्स निकाल देना और बस यूनिक दिखने की खातिर ये कुछ करना, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, हज़रत आयशा का भतीजी का बारीक दुपट्टा चीर देना, इसको गौर से सुनिएगा, हज़रत आयशा के दिल में किस तरह का दर्द है। आप एक बात नोट कर रहे हैं, जितने वाक़यात आ रहे हैं उनमें अक्सर वाक़यात हज़रत आयशा, हज़रत मैमूना, उम्मे सलमा, उम्मे सुलैम से, तो तभी तो इन लोगों के नाम है कि इनके दिल में दीन की क्या मोहब्बत थी और क्या मुकाम था। हज़रत आयशा की भतीजी बारीक दुपट्टा ओढ़े हुए इनके यहाँ आई, उन्होंने इसका दुपट्टा चीर फेंका, इसको डांटा और साथ ही एक मोटी ओढ़नी भी इसको पहना दी। वाक़या है, इमाम इब्ने साद ने अलकमा बिन अबी अलकमा से रिवायत की और उन्होंने अपनी वालदा से रिवायत की, कहती हैं कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की बेटी, कौन होंगे ये, हज़रत आयशा के भाई, इनकी बेटी हफ्सा को बारीक दुपट्टे में देखा, इसका गिरेबान नीचे से नज़र आ रहा था। आयशा ने इसके दुपट्टे को चीर दिया और फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरत नूर में जो हुक्म नाजिल फरमाया, क्या तुझे इसका इल्म नहीं है, क्या हुक्म है आपको पता, वल यदरिबना बिहुमुरिखिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और चाहिए कि अपनी चादरों को अपने सीनों पर ओढ़ लें। तो औरत के सर के कपड़े के साथ सीना, गिरेबान, गला, बाजू, ये सब आते हैं। यहाँ देखिए कुरान की आयत कोट करती हुई दिख रही हैं, अब आयशा को आयत ना आती तो कैसे कोट करती, तो यहाँ से इल्म की अहमियत समझ आती है। खैर, फिर एक ओढ़नी मंगवाई, ओढ़नी क्या होती, मोटी चादर, और इसको पहना दी। एक दूसरी रिवायत में क्या है, आयशा ने इसको चीर दिया और एक मोटी ओढ़नी पहनाई, क्या पता चला, हजरत आयशा ने डांट डपट और झाड़ने का दर्जा एहतसाब इस्तेमाल किया, यानी शदीद दर्जा। आप किसी को एकदम डांटते नहीं हैं, झाड़ते नहीं, लेकिन आयशा ने शिद्दत वाला अंदाज इख्तियार किया। और शायद इस सख्ती का सबब यह था कि आले सिद्दीक के अकबर की बेटी से ये तवक्को ना थी कि वह ऐसी बारीक ओढ़नी में घर से निकले। दूसरी बात है, हजरत आयशा ने बारीक ओढ़नी को उतारने का हुक्म देने की बजाय इसको चीर दिया। एक तो कह सकती थी ना, उतारो इसको, बदलो, चीर दिया। शायद इसमें भतीजी के लिए हमेशा याद रहने वाला सबक और कभी ना भूलने वाली तंबीह हो। हजरते साहबा के सिलसिले में कई वाक़यात साबित हैं, और उस वाक़यात क्या हैं कि इनकी निगाहों में औलाद की इस्लाह और तरबियत कपड़ों और दीगर चीज़ों से ज़्यादा कीमती और अहम थी। हजरत आयशा ने भतीजी के लिए इसकी गलती को वाज़ह करने की गरज से कुरान पाक की आयत का हवाला दिया, और यही बेहतरीन है। और हजरत आयशा ने गलत चीज़ के इजाले पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसका शरई नेमुल बदल अपनी तरफ से मुहैया किया। एहतसाब में इस बात का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। अब आप बात करें इस पर, है हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ें? क्या ये हदीस जो ये बात आपने मैंने पढ़ी है, क्या हज़रत आयशा सिला रहमी का खिलाफ कर रही? कतर रहमी है, हकूक वाले बात नहीं पूरे कर रही। देखिए ना, भतीजी का दुपट्टा फाड़ दिया, कभी वो फुफ्फी के बात आएगी, फुफ्फियाँ तो इसीलिए बदनाम है, पहले ही बदनाम है। अब और के देखो, ये तो मेरा दुपट्टा फाड़ती हैं। आयशा ने ऐसी कोई बात दिल में नहीं रखी। और याद रखिए, ये दर्जे होते हैं। अब आप कहें, अच्छा मेरी भतीजी ने आज के बाद पहना तो मैं तो पकड़ के जाके फाड़ दूंगी। नहीं, पहले उसको बताएं, पहनने से पहले ही बता दें कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए। एक बार, दो बार, और वो कैसे दौर की खवातीन थी, कैसी थी। लेकिन क्या हम बिल्कुल गूंगे खामोश शैतान बन जाएं? एक एक हदीस जो आप पढ़ रहे हैं उसका हवाला मौजूद है। मैं इस पर एक लफ्ज़ भी ना बोलूँ ना तो आपको ये हदीस खुद बोल बोल के बता रही है कि इस पर मेरा आपका अमल क्या होना चाहिए। क्या हमारे भी दिलों में इतनी गैरत आती है? सच बताएं, खुद सोचें, जब एक औरत बाहर जाती है, हदीस में आता है कि शैतान उसको मुज़य्यन करता है। क्या लोग मर्द हमारा चेहरा, जिस्म, टांगे, बाजू, हाथ नहीं देखते होंगे? और टाइट पजामों ने तो मती मार दी लोगों की, अकल पे पर्दे पड़ गए, और मर्द की अकल पे पर्दा पड़ता है और डालती औरत है। अगर औरतें ये कहती हैं ना कि मेरा हस्बैंड मुझे बेपर्द करता है, तो मैं कभी नहीं मानूंगी। क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी औरत, जिसको फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री कहेंगे, जिसके शौहर की दौलत दुनिया के सारे शौहरों की दौलत से ज़्यादा थी, और दुनिया के सारे शौहरों से ज़्यादा जुल्म उस शौहर का था, दोनों बातें, वो एक औरत थी जिसका नाम आसिया था, मिसिस फिरौन। क्या कहा उन्होंने, रब इब्नली इंदा कबई तन फिल जन्ना, सूरत तहरीम की आखिरी आयतें पढ़ लीजिए। वो नहीं रुकी, मारते हो तो मार दो, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी। दूसरी तरफ उसी सूरत में दो नबियों की बीवियों का जिक्र है, इमरात लूत और इमरात नूह। वो नबियों की बीवियां हैं और नहीं काम आए नबी, क्योंकि वो उनके मिशन में साथ नहीं थी। तो कोई शौहर दुनिया का इतना बड़ा साहूकार नहीं है कि आपको गलत काम पे माइल करें। ऐसे शौहर से तो बात भी की जा सकती है। ये आपके अपने अंदर की बात है। और आप देखिए, मैं इतना दर्द महसूस करती हूँ इस बात का, अपने मुल्कों में आकर गोरे करें, काले करें, नॉन मुस्लिम करें, अमेरिका वाले करें, कनाडा वाले करें और फ्रांस वाले करें, उनको जचता है। सीधी सी बात है, उनको सजता है, हमें तो जचता और सजता भी नहीं है। उन बेचारों के लिए तो ये कोई चीज़ ही नहीं है, उनके लिए तो ये बड़ा इशू नहीं। उनको तो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दीजिए तो बड़ी बात है। लेकिन जिस मुआशरे में दिन में, फिर कहूँगी कि 5 दफ़ा 15 अजानें होती हों, और जहाँ जुम्मे के खुतबों में, लाउड स्पीकरों में ये सब कुछ हो रहा हो, आप बताइए वहाँ ये कुछ होना चाहिए? यहाँ की औरतों का बाजारों में यूं निकलना और खुलेआम मॉल्स में जाना और शॉपिंग्स में जाना, अपने आप को सोचें तो फिर आप देखिए कि मेरा तो नहीं ख्याल कि फिर बाहर निकलने को भी दिल करेगा। किस किस से लड़के आऊँ, किस किस को बताकर आऊँ? तो ये दर्द पैदा करने की ज़रूरत है, और इसकी इब्तदा फिर घर से होगी। आप कहते हैं, अच्छा फिर आज जाकर हम अपनी बेटियों के दुपट्टे पाड़ दें। दे दीजिए नोटिस, 1 हफ्ता है आपके पास इस्लाह के लिए। आइए, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, कलाम अल्लाह का सुने, बात करें, कन्वर्सेशन कर लें, कायल कर लें, ये कर लें, उसके बाद मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। और फिर कर दीजिए, फिर जो होगा देखिए, पुलिस को नहीं वो बुलाएंगी, आप पाकिस्तान में अब बहुत सिक्योर्ड हैं, बात समझ रहे हैं? लेकिन ये दर्द नहीं आएगा ना, उम्मत की इस्लाह नहीं होगी। ये दिन ब दिन जो करप्शन बढ़ रही है, इसमें औरत का हाथ है। और मैं सोचती हूँ कि हया के तकाजे ख़त्म होते जा रहे हैं। कैसे पहले दौर में लोग एक घूंघट निकाल कर, एक आंख के पर्दे के साथ, वो टोपी वाला बुरका पहनती थी, आहिस्ता आहिस्ता होते होते कुछ शक्लें बदली, चेंज हुई। आज भी अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है वो अपनी हतुल विसा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेदीनी का दरिया है। आंख नहीं खुलती अगर आप किसी बाजार, किसी मॉल, किसी गली दुकान से गुजर जाए, आंख नहीं खुलती। मैं कहती ये बिल बोर्ड जो बड़े बड़े छोटी छोटी जो औरतें फिर रही हैं, यूनिक एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। हम औरतें इस पर एहतजाज क्यों नहीं करती कि हमें बंद कीजिए इन चीज़ों पे? और फिर जो लोग उनके बारे में डिस्कशन करते होंगे, ज़रा सोचिए कि आप और मैं सब औरतें हैं ना, अगर आप बाद में मुझे मेरे बारे में कुछ कहेंगी ना, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा कि आप ऐसी हैं, आपने ये पहना, आप वैसी हैं। आप किसी औरत का फिगर हम डिस्कस करें, फलां मोटी फलां पतली, वो पसंद करती है? तो जब हम बाहर दूसरों के सामने जाते हैं या दूसरों को देखते हैं, तो खरे को इजाज़त देते हैं ना कि आप हमें डिस्कस करें? तो अल्लाह के नबी की एक हदीस सुना कर आगे चलती हैं, फ़ैज़ लम तस्तही फ़सना माशेता। आपने फरमाया कि पिछले सुहफ में ये बात लिखी जा चुकी है कि जब तेरे अंदर हया ना रहे, फिर उसके बाद तू जो चाहे कर। ये हया की कमी की मुंह बोलती तस्वीर है कि औरतें अपने लिबास और हिजाब और अपने जिस्म से बेनियाज हो जाती हैं। है तो गोश्त का टुकड़ा ही ना, आप बाहर खुले हम गोश्त लेके चलती हैं, नहीं कोई जाता। किसी ने एक वाक्या लिखा हुआ था कि सऊदी अरब की किसी हॉस्पिटल में एक अरब सऊदी अरब से कोई आलिम आए थे, तो वो इलाज के लिए वहाँ पे एडमिट थे। तो जो उनकी टेक केयरर थी नर्स, इत्तफाकन वो भी मुस्लिम ही थी, लेकिन वो नंगी टांगों के साथ आती थी, जो भी उनका स्कर्ट के साथ ड्रेस होगा, तो उनको ये चीज़ बहुत चुभती थी। तो एक दिन उन्होंने उसे कहा कि बेटा जाओ और वहाँ बाज़ार से मेरे लिए बकरे की रान लेकर आओ, लेकिन एक शर्त है कि उसको खुलेआम लेकर आना, उसको किसी कवर में नहीं डालना। तो उसने कहा कि बहुत बुरा लगेगा जब मैं हाथ में बकरे की एक रान उठाकर लाऊंगी तो लोग देखेंगे। तो उसने कहा कि बेटा जिस तरह वो उसको देखेंगे, इस तरह लोग तुझे भी देखते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे। अगले वाक्य में कुछ और नसीहत है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बच्ची की लटों को छुपाने की तरगीब देना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने एक बच्ची की बेपर्दा लटों को देखा तो इन्होंने इसको छुपाने की रग़बत दिलाई। इमाम इब्ने अबी शैबा ने काबूस से रिवायत नकल किया और उन्होंने अपने बाप से ये बात नकल की है। उन्होंने एक औरत आयशा के पास भेजी, उसने बयान किया कि उन्होंने एक बेपर्दा लटों वाली बच्ची को देखा, तो फरमाया अगर ये इनको छुपा लेती तो इसके लिए ज़्यादा मुनासिब था। इस औरत ने अर्ज़ की इसको भी हैज़ नहीं आया, यानी बालिग नहीं हुई बच्ची, और ना इससे आसार जाहिर होते हैं। यानी देखिए आयशा के दिल में कितनी गैरत थी कि प्यूबर्टी की एज से पहले की बच्चियों के भी खुले बाल की लट नहीं देख सकी, कहाँ वो बाकी चीज़ें देखती। तो क्या पता चला? पहली बात है कि बच्चियों को पर्दे की तलकीन बलूगत के ज़माने को पहुँचने से पहले कर देनी चाहिए, ताकि बालिग होने तक पर्दे की पाबंदी इनकी तबीयत का हिस्सा बन चुकी हो। दूसरी बात है, आयशा की निगाह में औरत के सर के बालों को छुपाने की अहमियत इस कदर ज़्यादा थी कि उन्होंने इसकी रग़बत नाबालिग बच्ची को दी। अफसोस का मुकाम है, आज की मुसलमान बेटियों की एक बड़ी तादाद ज़माने बलूगत को पहुँचने के बाद भी बालों को बेपर्दा किए बाजारों में घूमती हुई नजर आती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जुल्फ़ें देखिए ज़रा, बड़े बड़े इश्तहारों पे बाल खोल के आपको शैम्पू बेचता हुआ दिखाएंगे। सिगरेट की मशहूरी है और बाल औरत के खुले हैं। कभी तो बंदा बैठ के सोचे मैंने बिकना है? आप देखिए खूबसूरती से लोग किस चीज़ को सजाते हैं जो बेचनी है, तो क्या औरत ने बिकना है? दूसरा, खूबसूरती से किसी को जो चीज़ पैक कीजिए ना, वो किसी को गिफ्ट में देनी होती है, तो क्या औरत किसी को गिफ्ट में अपने आप को देना चाहती है? आप घर में बने सजें, आप अपने शौहर के लिए जो पहन लें, जो खुशबू लगा लें, जो आप अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लें, आपको कोई नहीं रोकता। अल्लाह ने हर हलाल जज्बे की तस्कीन की है, तो यही चीज़ें आप जाके बाहर करें। अब शौहर को आप अच्छी लगी तो शौहर तो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा ना, तो आप मुझे बताइए कि बाहर वाले फिर क्या करेंगे उसके बाद? सीधी सी बात है, टेम्प्ट तो आपने किया, जज्बे तो दिला दिए, लेकिन अवेलेबल तो आप नहीं हो सकती। इस हद तक तो नहीं बिगाड़ आया कि औरतें के चलो फिर जो मर्द आए मेरे से अपनी ख्वाहिश पूरी करे, तो फिर आपने एक आग ही लगाई ना। तो ये आग अगर सोसाइटी से बंद हो जाए ना, यकीन करें कि हमारे घरों के अंदर सुकून आ जाए। और सच बताऊँ, अल्लाह आप सबको बचाए, और मेरा गुमान आप में से किसी के बारे में भी नहीं है कि आप ऐसे जुल्फे खोल के और बेपर्द जाती होंगी, बट ऐसी औरतों ने आपके मर्दों को ख़राब किया होगा। जब कुछ औरतें सोसाइटी की इस तरह बनी ठनी होती है ना, तो वो मर्दों की राल टपकती है। घर आते हैं तो बेगम जो है वो बिल्कुल ही ऐसे रंग रूप में है कि जिसको देखकर उनको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, तो फिर वो औरतें अट्रैक्ट करती हैं। बेपर्दा औरतें घरों में बेसकूनी का जरिया बनती हैं। फिर आपको अपने घर के अंदर अच्छे हाल में रहना चाहिए, और मर्दों की निगाहों को तो वही पाक करेगा। ये सारी बातें करते हुए सूरह यूसुफ याद आ रही है। हज़रत यूसुफ ने ऐसी औरतों और ऐसी सोसाइटी में रहने की बजाय जेल में रहने को प्रेफर किया था। ए अल्लाह, कैद खाना मुझे ज़्यादा प्यार है उसे मिम्मा यदून अनी, जिस चीज़ की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं। तो अल्लाह ताला हमारे बेटों, हमारे भाइयों, शोहरों की इज्जतों की हिफाजत करे। यकीन करें, घर घर स्कैंडल्स, अफेयर्स, मैं परेशान हो जाती हूँ कि पहले तो लड़का लड़की होते थे अनमेरिड, अब तो हर दूसरा वाक्या मैरिड्स का है। उसका शौहर उसकी बीवी, उसकी बीवी उसका शौहर। एक वाक्या मुझे हिला गया कि ऊपर नीचे फैमिली में, बाहर यूरोप में तो आम है, एक घर में शेयरिंग होती है और यहाँ भी आम है अगर घर की सेपरेशन हो। एक घर में दो कपल रहते थे, जिस भी मजबूरी में रहे, और कुछ सालों के अंदर क्या हुआ, दो ही कपल थे लेकिन कपल चेंज हो चुके थे। उसने अपने शौहर से तलाक ली और इसके मर्द के साथ ताल्लुक कायम हो रहा था, मजबूर किया, ये शरीफ बंदा था, इसने तलाक दे दी, उसकी शादी इधर है। उसकी बीवी ने इसके मर्द में इंटरेस्ट लिया, ये मर्द बड़ा गैरत आला था, इसने खुदकुशी कर ली। एक आज भी बैठी है, दूसरी दूसरे की बीवी बन गई है। ये तो एक कहानी है, ऐसी बीसियों कहानियां मेरे सीने में है। आज जो गंदगी की इंतहा है उसकी वजह ये बेपर्दगी है, बेहयाई है। आप अपने हलाल जज्बात को पूरा करें। अल्लाह ने शादी के बाद आपको हर हलाल जज्बे को पूरा करने की तौफीक दी है। इसमें घर की खवातीन को भी अपना मिजाज बदलने की जरूरत है। अगला वाक्य देखिए, आयशा का बच्ची की आवाज़ वाली पाजेबों पर एहतसाब। आयशा का एक छोटी बच्ची लाई गई, इसको हाईलाइट कीजिएगा, छोटी बच्ची, ये कोई जवान लड़की नहीं थी, बच्ची थी जिसने पाजेबें पहन रखी थी, और बच्ची की हरकत के सबब इन पाजेबों से आवाज़ निकल रही थी। उन्होंने इन पाजेबों के उतार फेंकने से पहले बच्ची को अपने यहाँ दाखिल होने से मना कर दिया। कहने लगी, इस आवाज़ के साथ मेरे घर में नहीं आओगी। वाक्या है, अबू दाऊद ने, इमाम अबू दाऊद ने अब्दुर्रहमान बिन हसान अंसारी से नकल किया। इनकी, अब्दुर्रहमान थे, इनकी आज़ाद करदा लौंडी बनाना से रिवायत नकल की है। क्या लिख कहती हैं कि वो आयशा के यहाँ मौजूद थी और इनके पास एक बच्ची को लाया गया जिसने आवाज़ पैदा करने वाली पाजेबे पहन रखी थी। उन्होंने फरमाया, इन पाजेबों को काट फेंकते तक इसको मेरे यहाँ दाखिल ना करना। मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है, जिस घर में घंटी हो, घंटी क्या, जो घुंघरू घुंघरू लगे होते हैं, इस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। यानी छोटी बच्ची को तो कुछ नहीं उससे फर्क पड़ रहा था, लेकिन वो घुंघरुओं की आवाज़ फरिश्तों को आने से रोक रही थी, इसलिए आयशा ने कहा कि इनको उतारो। क्या पता चला, अल्लाह रहमान की रहमतें हों आयशा पर, कि उन्होंने मेहमान नवाजी के शैतानी आदाब को अपने एहतसाब की राह में रुकावट ना बनने दिया। बात समझ रहे, क्योंकि हम में से अक्सर इस बात पे चुप हो जाते हैं कि मेहमान थे, फिर हम उनको क्या कहते हैं। ये भी एक झूठा तसन्नो है हमारे, कि मेहमानों की बड़ी इज्जत करनी है, और वो गलत से गलत काम भी कर लें तो जी मेहमान है, अब घर आए को क्या कहें। उनके अंदर ये रुकावट नहीं थी। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही बना दे। दूसरी बात है कि हज़रत आयशा ने ममनुआ जेवर पहनने पर एहतसाब किया। बच्ची की छोटी उम्र इनकी ये एहतसाब की राह में हायल ना हो सकी। यानी वो ये नहीं सोच रही थी कि लोग कहेंगे जी अब छोटी बच्ची पर यह तनकीद कर रही हैं, ये तो बड़े रिजर्ट हो गए। नहीं, छोटी थी या बड़ी थी, गलत काम को उन्होंने देखा तो रुका। अगली बात है कि हज़रत आयशा इस बात का इस कदर इहतमाम करने वाली थी कि इनका घर ऐसी चीज़ से पाक रहे जो रहमत वाले फरिश्तों की दूरी का सबब हो। इसको हाईलाइट करें। क्या हमारे घरों में तो ऐसी आवाज़ें नहीं आती जो रहमत के फरिश्तों को दूर भेजें? फिर बीमारियाँ क्यों ना आएँ, फिर परेशानियाँ क्यों ना आएँ, फिर नाइत्तफाकी, झगड़े, लड़ाइयाँ क्यों ना आएँ, कि जिन घरों में हर वक्त वो आवाज़ें हों जहाँ फिर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और मैंने देखा है, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, लोग टीवी चला देते हैं, म्यूजिक चल रहा है, एड्स चल रहे हैं, ढिंग डोंग चलती रहती, गुना बेलज्जत वाली बात है। और दुख की और रंज की बात है कि लोगों की एक बड़ी तादाद बहुत ज़्यादा माल खर्च करके इस किस्म के साजो सामान को अपने घरों में ला रही है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और फिर यहाँ हज़रत आयशा का ये अमल के नबी सल्लम की हदीस को ही उन्होंने दलील के तौर पर पेश किया है। इन इश्यूज़ को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अकल की ज़रूरत नहीं है, मोटी से मोटी अकल में भी ये बातें समझ आती हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगेंगे हम सब कि अल्लाह ताला हमें शऊर दे, समझ दे। अगली वाक़यात और भी हैं लेकिन यहाँ आज हमारी क्लास का वक्त पूरा हुआ। लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है? देखिए, मैं आपकी इस्लाह की खातिर ये जुमले बोल रही हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद अब दिल तो करता है कुछ करें, राइट? करना कैसे है? आज जाते ही सब के दुपट्टे भी फाड़ दें, घुंघरू भी तोड़ दें और उनको बुरा बुरा कहें? नहीं, इस्लाम का मिजाज यूँ चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ग्रेजुअलिटी। ऐसे तमाम लोग जो आपकी रेंज में हैं, दूर आलो की तो बात नहीं की, आप उनके साथ बैठें, कॉन्वर्सेशन करें। जो सबब है ना, वो अल्लाह से दूरी और कुरान से दूरी है। खुशफहमियाँ हैं, शऊर ही नहीं है तरीके से बात करें। टाइम दे दें, सोच लें, एक हफ्ते का दे दें, एक वीक का दे दें, और अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो फिर आप तो अपनी बात मनवा सकते हैं ना। सीखने का अमल रखें, सिखाने का अमल रखें। कितनी बदबख्ती है कि एक बंदा अल्लाह का हुक्म सुनना भी ना चाहे, महरूमी है, शिकावत है, ये कोई खुशी की बात तो नहीं है ना। तो बस ये दुआ करें कि हम जोड़ें उनको प्यार से, जिनको अभी तक दीन नहीं पता उनके से सख्ती ना करें, वो और दूर हो जाएंगे, वो तो थ्रेट होंगे, आप उसका सबब ढूंढें। अब आयशा ने अगर उनका दुपट्टा फाड़ दिया और फिर स्टिल वो भतीजी उनसे खुश ही रही होगी, आज आप अपनी भतीजी का दुपट्टा फाड़ेंगे, हो सकता है वो इस वजह से आपसे और ही मुतनफर हो जाए। देखिए, हो सकता है उस बेचारी को पता ही नहीं होगा कि मामा ने बना दिया, मामा लेकर आती हैं, और मामा ही लाती हैं, और कौन लाता है, बाबा तो नहीं लाते ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली मोहब्बत, क्लोजनेस, कुर्बत से दिल में उनके बात जाले, शुरू में ज़रा सी उनको नहीं भी अच्छी चीज़ लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता उनका मिजाज बनाए। चलिए यहाँ रुकते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।